हरे कृष्णा। तो आज के इस 2 दिसंबर के संध्या जागृति कार्यक्रम में आप सबका बरसाना में स्वागत है। भक्ति वेदांत आई हॉस्पिटल बरसाना में आप सबको स्वागत है। तो वो जो फिल्मी गाना मैं गाना चाहता हूँ वो ऐसा है, कह तो कोई ना करे यहाँ प्यार, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, इसमें खुशियाँ है कम बेसुमार है गम, एक हंसी और आंसू हजार, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। यह है तो फिल्म का गाना लेकिन इसमें बहुत बड़ी गहरी सच्चाई छुपी हुई है, वास्तव सत्य छुपा हुआ, इसलिए ऐसे फिल्मी गाने हम गाते हैं हमेशा, क्योंकि हम दुनिया में सब जगह पर दिल लगाते हैं। कृष्णा भूलिया जी भोग वांछा करे, भगवान को भूल जाते हैं और फिर माया लिपट जाती है, निकटस्थ माया तरे छपटिया थरे, फिर जैसे ही हमारे हृदय में, सबके हृदय में एक प्रेम की भूख रहती, क्योंकि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण के नित्य दास और कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के ही हिस्सा है, और कृष्ण तो प्रेम की मूर्ति है, हमारे अंदर भी प्रेम का भाव है, और जैसे प्रेम की मूर्ति के साथ संबंध तोड़कर आते हैं, प्रेम भाव तो नष्ट नहीं होता है, प्रेम की भूख तो नष्ट नहीं होती, तो बनी रहती है ऐसी, तो वो प्रेम की भूख जो है वो फिर कहीं ना कहीं उसको देखेंगे ना मिटाने के लिए, उसको घर में भोजन नहीं मिलता है बीवी के हाथ तो होटल में खाएगा कि नहीं खाएगा, भूख तो लगती है ना उसको, घर में दाल चावल नहीं मिलता होटल में जाके समोसा खाएगा, वो गिरिराज मिष्ठान भंडार के सामने खड़ा होके कचौड़ी और पूड़ी खाएगा, खाएगा जो है ना, भूख तो है ना उसको, लेकिन जिसको घर में मिलता है भोजन वो बाहर नहीं खाता है, तो घर में का जो स्वाद है प्रेम का उसको बाहर भी मजा नहीं आता है, तो फिर यहाँ किसी से प्रेम करने की कोशिश करते हैं प्रेम की भूख मिटाने के लिए, और फिर एक हंसी और आंसू हजार, ऐसा यहाँ इस प्रेम का स्वभाव है, यहाँ का थोड़ी सी खुशी मिलती है शुरू शुरू में, उसके बाद फिर गम ही हम मिलते हैं, और फिर एक आदमी फिर एक प्रेम में अगर असफल रह जाता है फिर वो दूसरा प्रेम ढूंढता है, उसमें भी ये स्टोरी है, एक हंसी और आंसू हजार, तो तीसरा प्रेम ढूंढता है, चौथा प्रेम ढूंढता है और ढूंढते रहता है, लेकिन आखिर तक उसको नहीं मिलता है, फिर उसको ध्यान में आता है कि मैं गलत जगह पर हूँ, है ना, मैं तो हंसी और खुशी पाने के लिए आया था लेकिन गम और कष्ट की जगह पर आ गया हूँ, मैं तो आम खाने आया था लेकिन तो करेले के बाग में घूम रहा हूँ, कैसे आम मिलेगा उसको, नहीं नहीं वो इस बार मैंने आगे ढूंढा था, अगली बार पीछे ढूंढूंगा तो मिल जाएगा शायद, आगे पीछे भी हो गया, मैं साइड में ढूंढूंगा, अरे नीचे ही ढूंढ रहा हूँ, ऊपर कहाँ ढूंढा है अब तक, लेकिन आगे पीछे राइट लेफ्ट ऊपर नीचे क्या है, करेला ही करेला है, क्योंकि हम करेले के बाग में खड़े, बाइबल में भी लिखा है कि इस दुनिया में अगर आपको खुशी चाहिए तो क्या करना चाहिए, इस दुनिया में खुशी चाहिए तो क्या करना चाहिए, वो कहते हैं पहले इस दुनिया में खुशी ढूंढना बंद करो, अगर आपको दुनिया में खुशी चाहिए तो सबसे पहले दुनिया में खुशी ढूंढना बंद करो, क्योंकि दुनिया में खुशी का इंतजाम किया ही नहीं है भगवान ने, गुंजाइश ही नहीं की है, कोई परवरिश क्या बोलते उसके इन्वेस्टमेंट नहीं बनाया है, क्या बताया भगवान ने, दुखालयम अशाश्वतम, ये तो दुखों का सागर बनाया मैंने यहां पर, दुखों का घर बनाया है, वो भी आज ये दुख है तो कल दूसरा दुख है, ये दुख समाप्त हो जाएगा, परमानेंट नहीं बनेगा कुछ दुख, लेकिन दुख जरूर रहेगा। और सबसे अधिक दुख होता है जब हमारा दिल टूटता है किसी के प्रेम में, है ना। सबसे अधिक आत्महत्या कब होती है, जब कोई गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड ने ना बोल दिया, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड ने ना बोल दिया, तो उधर तुरंत विष पीने की इच्छा होती है कि मैं मर जाऊंगा। हर एक जवान आदमी इस दौर से गुजरता है कि उसने मुझे ना बोला, बस अभी मैं मरना चाहता हूं, उसके बिना जिंदगी भी क्या है, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे। कृष्ण के लिए गाना चाहिए, लेकिन हम दुनिया के लिए गाते हैं, तेरे बिना भी क्या जीना। सच्चा साथी कौन है, तो कृष्ण है। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। तो हम सब अपना प्रेम सब खो चुके हैं दुनिया, और फिर वो सच्चा प्रेम खोकर इस दुनिया की दर दर ठोकरे देने वाला प्रेम ढूंढ रहे हैं, जिसमें मार निश्चित है, वो प्रेम बिल्कुल है ही नहीं, ये भी निश्चित है, लेकिन फिर भी भागते हैं उसके पीछे। शराब पीने वाला कैसे मार ही खाता है उसके अंदर, लीवर खराब कर लेता है, दिमाग खराब कर लेता है, सब कुछ गलत काम करता है, लेकिन फिर भी उसके पीछे भागता है, क्योंकि उसके सच्चे प्रेम की जो भूख है ना, वो नहीं हो रही है। जैसे अपने आपको प्यास लग रही है, मैं आपको एक एक ग्लास दूध दे जा रहा हूँ, गरम गरम दूध पिलाया जा रहा हूँ, आपको प्यास लग रही है, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझेगी। या तो मैं आपको समुद्र का पानी ला के दे रहा हूँ, खारा पानी, और आप पीते जा रहे हैं उसको, फिर प्यास नहीं बुझ रही। क्यों, लगता है पानी जैसा कुछ पी रहा हूँ, लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है। वैसे ही कुछ अवस्था है यहाँ पर दुनिया में। सब जगह हम सच्चे दिल से पहुँचते हैं प्रेमिका के पास, या पिता बालक के पास, या बालक पिता के पास, बहन भाई के पास, भाई बहन के पास, पड़ोसी पड़ोसी के पास, मित्र मित्र के पास, उसी सच्चे दिल में पहुंच जाता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद जरा सा कुछ बात हो जाती है और खलास, सब फिनिश हो जाता है, दिल टूट जाता है। मैंने मेरे बचपन में ऐसे कितने, स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, 5 साल की उम्र में, तब से लेकर मैंने देखा है, पहले कक्षा में, 5वीं कक्षा में, 7वीं कक्षा में, ऐसे कितने जिगरी दोस्त थे, लड़का लड़की, लड़की लड़कियाँ, लड़के लड़के, ऐसे जिगरी दोस्त थे। कुछ तो भी बीच में हो गया, जिंदगी के लिए दुखी हो गए, नाम लेकर भी अभी उसको तड़पते हैं दिल उनका। कुछ ऐसा हो गया बीच में, एक बात ऐसी हो गई कि अक्सर फिल्मों में कैसा होता है, दो दोस्त थे, बहुत जिगरी दोस्त थे, इतना प्यार था कि जान की बाजी देने को तैयार थी, फिर एक लड़की आई, फिर लड़की का दोनों का लड़की पर प्रेम हो गया, और फिर लड़की की वजह से दोनों ने इसरो को खून कर डाला, पता है ना, ऐसे कितनी पिक्चर निकली। वैसे क्या बोलते हैं पिक्चर का नाम क्या होता है, एक फूल दो कांटे। ऐसा पिक्चर होता कि नहीं, एक फूल दो कांटे, यही है। क्योंकि प्रेम की और यहाँ के संबंध की जो नींव है ना, नींव इतनी कमजोर है, इतनी बेबुनियाद है, वो उस पर कोई टिक ही नहीं पाता है। अभी एक चीज ऐसी कोई तुच्छ चीज बीच में आ जाती है, और इतनी जिंदगी इस पर की दोस्ती जो है, तो बचपन से लंगोटी यार थे, लंगोटी से यार से लेकर जवान होने तक दोस्ती थी, जवान होते ही एक लड़की बीच में आ गई, खत्म दोस्ती वोस्ती, खत्म सब, खून खराब पे उतर गए। क्योंकि बुनियादी यहाँ भी गलत है, सब ये चमड़ी जो है ना, चमड़ी और मांस, ये बुनियाद है उसकी, और चमड़ी और मांस की बुनियाद जो है ना, कभी टिकती नहीं है, समाप्त हो जाती है, जितनी भी चमक रहेगी उसके अंदर कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगी, पता चलेगा सब झूठ है इसके अंदर। और ये एहसास दिलाने के लिए भगवान ने हमको यहाँ भेजा है, मुझे छोड़कर जा रहे हो कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं करता किसी के ऊपर, जाओ मौज करो, फिर जब एहसास होगा, कुछ अनुभूति होगी, तो लौट के आओ, मैं बैठा हूँ। इसलिए जब तुरंत जब हम समझते हैं, उनको अनुभूति होती है कि ये सब झूठ है दुनिया का, तो भगवान फिर ठुकराते नहीं हमको कभी, अभी आ रहे हो, हाँ तब चले गए थे, जाओ अभी, खड़ा मत करने, खड़ा नहीं करेंगे आपको, ऐसा नहीं करेंगे। जिस क्षण आप लौट कर आएंगे ना, तुरंत गले लगा देंगे। वो आपके व्हाट्सएप पर फोटो है ना, कृष्ण को सुदामा नहीं, गोप कुमार को कृष्ण गले लगा रहे हैं, वो सच्चाई है, वो वास्तविक सच्चाई है जिंदगी की। सच्चा वास्तव वही है कि सच्चा प्रेम जो करता है ना, वो कितने भी देर से सालों साल बाद भी आप लौट के आओगे छोड़ के उसको, फिर भी वो आपको अपनाएगा, बदले की भावना रखेगा नहीं। तुमने मुझे इतना तड़पाया इतने सालों तक, जाओ मैं आज आपको ना करता हूँ, ऐसा नहीं करेगा। ठाकुर जी हम तुरंत आपको अपनाएंगे। इसलिए मुझे ये गाना जो है ना बहुत दिल को छू जाता है, क्योंकि सब लोग खुशियाँ ढूंढ रहे हैं लेकिन हाथ में आंसू आ रहे हैं। अल्टीमेटली आंसू ही मिलते हैं सबको, क्योंकि हम गलत जगह पर यहाँ पर प्यार देख रहे हैं, गलत जगह पर सुख ढूंढ रहे हैं, तो नहीं मिलेगा यहाँ पर। एक ही चीज़ में यहाँ पर प्रेम मिलेगा, वो है ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी के संबंध में, ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी के भक्तों के संग में, ठाकुर जी के विषय में कोई भी संबंधित चीज़ है उसके संपर्क में। जैसे प्रसाद ठाकुर जी का, ठाकुर जी का मंदिर, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का पवित्र स्थान, ठाकुर जी की लीला, उनकी कथा, उनके विषय में जो भी कुछ है, उनका रूप, उनके विषय की चर्चा, उनके नाम, उनका नाम, इसमें आपको प्रेम मिलेगा। क्योंकि ये स्थान जो है ठाकुर जी का, ठाकुर जी की जो कथा है, ठाकुर जी का जो नाम है, ठाकुर जी का जो रूप है, और स्वयं ठाकुर जी हैं, ये सब व्यक्ति हैं। ठाकुर जी व्यक्ति तो है ही, लेकिन ठाकुर जी के संबंधित जो वस्तु है वो भी व्यक्ति हैं, नाम भी व्यक्ति है, नाम प्रभु कहते हैं उसे, धाम भी व्यक्ति है, धाम का भी एक व्यक्तित्व तो होता है, धाम भी एक पर्सनैलिटी है जो आपसे संबंध करता है, आदान प्रदान करता है। जब आप धाम से साथ अपने आप को प्रस्तुत करते हो तो धाम भी अपने आप को प्रकट करता है साधना के माध्यम से। धाम का एक महात्म्य है, आप कहीं भी जाओगे ना, समझो कोई पवित्र स्थल है तो लोग वहाँ शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, नशा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो उन लोगों के लिए धाम अपना गौरव जो है वो छुपा लेता है, जो लोग ऐसी भावना में रहते हैं। और जो वहाँ जाके भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, नाम लेते हैं, भजन करते हैं, उनके लिए धाम अपना गौरव प्रकट कर लेता है। ब्रज तो सब जगह पर है, लेकिन कुछ जगह डकैत लोग रहते हैं, कुछ जगह संत लोग रहते हैं। संत लोग जहाँ रहते हैं और जाते ही आपको कुछ अद्भुत अनुभूति आएगी, आप कुछ ऐसा लगेगा कि मैं किस पवित्र स्थान पर आ गया। इसका अनुभव मैंने किया हुआ है। मैं अमेरिका गया था 2007 में, तो मैं एक बाग में गया था, इसका नाम था टॉम्पकिन स्क्वायर पार्क। वैसा पार्क है ना कि जिसमें चारों बड़ा विशाल पार्क होते हैं, वहाँ पर हमारे जैसे पार्क ही नहीं है यहाँ पर, वहाँ पर विशाल पार्क होते हैं, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े चलने की जगह होती है, बड़े कटे हुए पेड़ होते हैं अच्छी तरह से, बहुत सुंदर दिखने वाले। तो उसमें मैं जब एंट्री किया तो यहाँ पर कुछ लड़कियाँ और लड़के विचित्र कपड़े पहनकर, आधे नंगे कपड़े पहनकर ब्राउन शुगर पी रहे हैं, चरस गांजा पी रहे हैं। इधर गया तो उधर कुछ लड़के लड़कियाँ रास्ते पर ही कुछ गंदा काम कर रहे हैं खुलेआम, और करते 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 आगे चला गया, ये सब गंदगियों से गुजरते हुए कुछ खा रहे पी रहे कुछ कर रहे हैं, कुछ व्यभिचार कर रहे हैं। तो आगे चला गया तो एकदम पवित्र लगा एकदम मुझे। उधर क्या लिखा है, हरे कृष्णा ट्री। तो वो कौन सा ट्री है जिसके नीचे प्रभुपाद जी ने बैठकर सबसे पहले कीर्तन किया था, जब वो अकेले गए थे, कोई साथी नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ सहारा नहीं। तो वो गार्डन में, उसी टॉम्पकिन स्क्वायर पार्क में, उस पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने, डब्बा होता ना डब्बा, जैसे आप ढक्कन लगाते हो उसको, वो कुछ खाना रखते हो उसके अंदर सूखा, तो खाली होता तो दोनों तरफ से बच सकता है ना वो, तो वो डब्बा लेकर बजाते हुए उन्होंने कीर्तन किया था। आँख बंद करके किया उन्होंने कीर्तन आधे घंटे के लिए, जब आँख खोली तो कई लोग जमा हो गए थे, फिर खड़े हो गए वो, उन्होंने प्रचार किया, कुछ लेक्चर दिया, उसके बाद रेगुलरली वहाँ जाके बैठने लगे वो और गाने लगे, और कई लोग नए 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 वहाँ पे आते थे, फिर गोल 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 नाचते थे बूढ़े जवान सब लोग मिल के। तो वो एक पवित्र स्थान हो गया, साधु ने वहाँ पर, भारत के प्रसिद्ध साधु ने वहाँ पर जाकर भजन किया, तो कई लोगों का हृदय परिवर्तन किया, उनको भक्त बनाया, अपने आश्रम में ले गए, सब लोग ब्रह्मचारी बन गए, कोई माता विवाह प्रभु जी का विवाह करके वैष्णव बन गए, तो वो ट्री है हरे कृष्ण ट्री। तो इतने सारे जंजाल में जब हम जाते हैं, इधर भी पेड़ है उधर भी पेड़ है, उसी जाति का पेड़ है, इधर भी है उधर भी है, कहीं आपको कुछ लगेगा नहीं। उधर उसके पेड़ के नीचे जाएंगे एकदम मन शांत और दिव्य भावना आएगी आपको। हमने भी वहां बैठकर कीर्तन किया, इसलिए मैं इस सत्य को मानता हूं, मेरा विश्वास है इस पर। अभी आप मान मंदिर जाएंगे, मान मंदिर एक 80-90 साल पहले की बात, वो डकैतों का अड्डा था। वहां पर गुफा भी आज भी है, और गुफा में लुटा हुआ धन रखते थे, वहां पर शस्त्र भी रखते थे, और केवल डकैत रहते थे वहां पर। तो खंडेर था वो, कोई जाता नहीं था वहां पर, भली लीला स्थली है वो, लेकिन क्या लीला स्थली, डकैत वहां पर बंदूक रख रहे हैं, चाकू रख रहे हैं, तलवार रख रहे हैं, धन रख रहे हैं लूट के लाया हुआ, रात को शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर रमेश बाबा जी आए 1952 में वहां पर, उन्होंने भी वहां पर भजन किया, डकैतों ने विरोध किया, धमकाया डराया, फिर भी डरे नहीं, फिर वहीं बैठे रहे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, डकैत चले गए और ये रह गए, और साधु आने लगे, और धीरे 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 आज आप क्या देख रहे हो, कुल साधुओं का वहाँ मेला है कम्प्लीट। वहाँ जाते ही आपको एक नया अनुभूति मिलेगा। तो मैं इसलिए बताया कि क्योंकि स्थान जो है पवित्र, वो ठाकुर जी ही स्वयं है, ठाकुर जी से अभिन्न है, और ठाकुर जी व्यक्ति है तो धाम भी व्यक्ति है। वो व्यक्ति जो दिव्य व्यक्ति है, वो आपको सच्चे प्रेम का अनुभूति दे सकता है ना। ये मोबाइल आपको प्रेम दे सकता है क्या? मोबाइल प्रेम दे सकता नहीं है, तो एक साहित्य है ये, इसमें जान नहीं है, इसमें आत्मा नहीं है। जो चीज में आत्मा होती है वो आपको प्रतिसाद दे सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है, आपके साथ में आदान प्रदान भावनाओं का हो सकता है। जब वो जीव होता है, आप जीव हो मैं जीव हूं, तो हमारे बीच में भावनाओं का आदान प्रदान हो सकता है, और वो भावनाओं का आदान प्रदान जो आपको जरूरी है, जिसके लिए आप तड़प रहे हो, जो आपकी अंदर की भूख है, प्यास है, वो जो प्रेम की असली दिव्य भूख आपके अंदर है, वो केवल भगवान ही मिटा सकते। मिटाने के बदले में मैं कहता हूँ पूर्ति कर सकते भगवान, मिटाना तो हमको चाहिए नहीं। रोग को हम मिटाते हैं, लेकिन आरोग्य को बढ़ाते हैं ना, उसको आरोग्य तो हम चाहते हैं। तो ये प्रेम की जो पूर्ति है वो केवल ठाकुर जी कर सकते हैं, और वो ठाकुर जी जो है आपके यहाँ विराजमान है, उनके ही आश्रम में हमको रहना है। जब वो रहेंगे, हम रहेंगे उनके चरणों में आश्रय में, तो फिर एक भी अश्रु नहीं आएगा, और हजारों खुशियां और प्रेम की अनुभूतियां उनका विकास होगा, फुवारे फूटेंगे उसके, तो ऐसे फिर दर्द भरे गीत नहीं गाएंगे, एक हंसी और आंसू हजार, कह दो कोई ना करे यहां प्यार, ऐसे गीत नहीं गाएंगे। फिर क्या कहते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरणे गति अर नाही मो, ऐसा गीत है। फिर क्या बोलेंगे, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मतलब राधा रानी की गली में, ऐसे गीत गाएंगे। प्रेम होता है ना किसी को भगवान पर, तो फिर वो ऐसे गीत गाता है, फिर दुनिया की कोई चीज उसको दुखी नहीं कर सकती। चाहे कोई मरे, कोई जिए, कोई बीमार हो, कोई कुछ धन का नुकसान हो, कोई भूकंप आ जाए, उसके आनंद की स्थिति में फर्क नहीं पड़ता है। कुछ होता है दुख, उसको भी कैंसर हो जाता है कभी, लेकिन उसकी जो आनंदमय स्थिति जो है ना प्रेम की, उसमें अंतर नहीं आता है। और आप बताइए मुझे, आप सबको ऐसी स्थिति अच्छी लगेगी कि आपको भयंकर रोग हो रहा है, या घर में नुकसान हो गया, कहीं किसी प्रिय व्यक्ति का मृत्यु हो गया, लेकिन आपके आनंद की स्थिति वैसे ही बनी हुई है आत्मा के स्तर पर, आपको ऐसी स्थिति में रहना अच्छा लगेगा? कितना लोगों को अच्छा लगेगा ऐसा बताइए? यस, नहीं अच्छा लगेगा आपको ऐसा? कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको दर्द में रहना अच्छा लगता है, जैसे दुनिया के कवि होते हैं ना कवि, उनको दर्द में डूबा रहना अच्छा लगता है। ऐसे कई लोग मैं जानता हूँ, बिना दर्द के कविता सूझती नहीं उनको, इसलिए वो दर्द में पड़े रहना पसंद करते हैं, क्योंकि नई नई कविता जो है
गंदी रहती
है। दिस इज अ फैक्ट, हाँ। इससे मैंने कविता लिखना बंद कर दिया। पहले लिखता था मैं, लेकिन मुझे ध्यान में एक बात आई कि जब बहुत दर्द होता है तो ही एक बेस्ट कविता निकलती है। और फिर मैंने तुकाराम महाराज की कविताएं पढ़ी, अभंग पढ़ी, वो तो प्रेम का ही वर्णन है उसके अंदर। तब मुझे ध्यान में आया कि ये दुनियादारी की कविता जो है वो दर्द के बाद ही निकलती है, और संत की कविता जो है वो प्रेम से निकलती है। वो 26 गुण हैं वैष्णव के, उसमें एक गुण है वो कवि, कवि है वैष्णव, भगवान के प्रति प्रेम से काव्य लिखता है। लेकिन वो स्थिति आने का टाइम लगता है ना, बीच में हम लोग बेकार के दर्द वाले कविताएं लिखते रहते हैं, चलो बंद करो इसको। जब प्रेम आएगा अपने आप कविता निकलेगी, तब कविता लिखेंगे ठाकुर जी के लिए। ऐसा है सर। और एक संत ने, मैंने सुना है इसके प्रवचन में, कि दुनिया में जितने भी गीत लुके हैं, जितने भी गीत है दुनिया में, उसमें हिट सॉन्ग कौन से, हिट सॉन्ग बताओ, दर्द वाले सॉन्ग वही हिट हो जाते हैं। लोग दर्द वाले गाना सुनते वाह वाह करने लगते, वाह क्या बात है। आप कभी बैठे होंगे तो आप पता चलेगा, कोई दर्द वाला शेर मारा तो वाह वाह क्या बात है ऐसे बोलेंगे, क्योंकि दर्द की सेवा कुछ है ही नहीं यहाँ पर, दर्द को ही वाह वाह की जाती है। और दर्द को जितना अधिक अच्छी तरह से आप व्यक्त करेंगे उतनी ज्यादा वाह मिलेंगे आपको, वाह क्या बात कही। वो दर्द सबको मिल रहा है, आपको सबको मिल रहा है दर्द वो, लेकिन कोई आदमी उसको अच्छे शब्दों में अच्छा जोड़ के फर्स्ट क्लास उसको ऐसा बोल रहा है कि आपको लगे वाह क्या बात है, लेकिन मूर्खता की बात है, उसको वाह वाह करने की चीज क्या है, वो खुद तड़प रहा है आपको पसंद पड़ता है। हमको तो लोगों को वो चीज देनी चाहिए जिससे लोगों को खुशी मिले, इसमें कुछ बात है। अगर किसी को खुशी दे सकते हो, दर्द देने में सब कुछ, सब लोग बाय बर्थ एक्सपर्ट है। बच्चा जन्म होते ही माँ को कितना दर्द देता है, बाय नेचुरल है ना, जन्म दे रहा है तब से दर्द दे रहा है, और खुद भी रो रहा है बेचारा, खुद भी दर्द पा रहा है माँ को भी दर्द दे रहा है, तो उसको बड़ा करने में कितना दर्द है। जिंदगी चल रही है, क्यों चल रही है, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं प्रेम है, कोई आर्टिफिशियल क्यों ना हो, कुछ ना कुछ अटेम्प्ट है उसके अंदर, प्रयास जरूर है प्रेम का, इसलिए जिंदगी चल रही है। अगर माँ समझो बोलती कि अरे गाली इतना नहीं, अभी गाली छोड़ दो, अरे आते ही दर्द दे रहा है तू, इतना चल हट यहां से, मुझे नहीं तेरा कुछ करना है, आने के पहले दर्द दे रहा है, प्रेगनेंसी में इतना दर्द दिया हो तो बोझा उठा, फिर भी आनंद लग रहा था अंदर, तो पैर मार रहा था तो कुछ खुशी का अनुभव हो रहा था, बाहर आने का समय इतना दर्द दे रहा है मुझे। मेरे तो कुंडली में लिखा था कि जन्म के बाद में माँ को जख्म होगी, इसको इसके माँ को, तो मुझे समझ में नहीं आया पहले, बाद में माँ ने बताया कि मेरा जन्म होने के बाद में ऑपरेशन कर दिया बच्चा न होने का, तो वो जख्म हुआ ना, काट दिया ट्यूब, ऐसा है सब। दर्द तो है ही सब जगह पे, लेकिन वो जिंदगी सफल है जब हम किसी को खुशी देने में सफल हो जाते हैं। हमारे हाथ से बहुत सारा पर्वत बनाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ खुशियों का देने की जरूरत नहीं, जो भी हो थोड़ी बहुत हो सके अपनी खुशी देने का प्रयास करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हम कुछ ठाकुर जी की दिशा में कुछ पाए हैं, है ना, क्योंकि वो तो प्रेम का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासे हम, तो वो तो प्यार का सागर है, उसमें से किसी को हमने खुशी दिया मतलब वहीं से लिया ना, वहीं से आएगा वो, फिर किसी को मिलेगा, वो जिंदगी में करना चाहिए। वो जब करेंगे ना तो न केवल दूसरों को खुशी मिलेगी पर हमको भी खुशी मिलेगी, बल्कि हालांकि दूसरों को मिलने के पहले खुद को मिलेगी, केवल प्रयास करने से, दूसरों को खुशी देने के प्रयास में दूसरों को मिलने के पहले सबसे पहले खुशी आपको मिलेगी, फिर दूसरों को मिलेगी, कर रहे दूसरों के लिए लेकिन मिलेगी पहले आपको, और दूसरों को दुख देने के समय भी दुख पहले आपको होगा दूसरों को मिलेगा। इसलिए भगवान के भजन का मार्ग जो है ना सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि उसमें सब जगह खुशियां ही खुशियां है, आनंद ही आनंद है चारों तरफ, आनंदी आनंद गड़े इकड़े तिकड़े चोही कड़े। हाँ ठाकुर भक्तियों क्या कहते हैं, चोरी के आनंद देखी आत्मनिवेदन तुया पौधे कोरी हुई नु परम सुखी। जैसे ही भगवान के चरणों में आश्रय लेते हो इतनी खुशी होती है, जहां देखो वहां ही खुशी खुशी मिलती है। चौधरी की आनंद देखी, चारों तरफ आनंद दिख रहा है उसे, और कोई व्यक्ति उसी जगह खड़े होकर बोल रहा है सब जगह दुखी दुख है ना। कोई कवि खड़ा होगा आपके सामने, आप बोल रहे हैं चौधरी की आनंद देखी, इकड़े तिकड़े चौही गड़े आनंदी आनंद गड़े, वो बोल रहे हैं चारों तरफ दुखी के दुखों का सागर में डूबते जा रहा हूं उसी जगह खड़ा है, क्योंकि एक ने भगवान से प्रेम किया है, एक ने दुनिया से प्रेम किया है, जिसने दुनिया से प्रेम किया है उसको चारों तरफ दुखी दुख दिखाई पड़ रहे, ने भगवान से प्रेम किया है उसको चारों तरफ आनंद दिखाई पड़ रहा है। आनंद से डोही आनंद तरंग, तुकाराम महाराज कहते हैं एक बार भक्ति का आनंद चख लो डूबते जाओगे आनंद के सागर में, सब जगह आपको आनंद के तरंग मिलेंगे, लहरें मिलेंगी, खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, आत्मा आनंद अंदर का आनंद प्राप्त होगा। इसलिए हमें सबको ये निश्चय करना चाहिए कि अगर भगवान के रास्ते में हम नहीं हैं तो निश्चित रूप में कदम कदम पर दुखों का ही सामना करना पड़ेगा, और भगवान के रास्ते पर है तो कदम कदम पर खुशियां मिलना आरंभ हो जाएगी। और आपके शरीर में आपके परिवार में कितने दुख भी आएंगे फिर भी आपका आनंद का जो लेवल है ना कभी फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि आत्मा आनंद अलग स्तर पे होता है, शरीर का सुख दुख दूसरे स्तर पे होता है, और जिसको आत्मानंद का अनुभव और भाग्य प्राप्त है वो शरीर में कुछ भी उसके हो जाए आत्मानंद के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता उसके अंदर। इसलिए हम भगवान का नाम जपते हैं। कुछ लोग बोलते हैं क्या आप पढ़े लिखे हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, MBA हो, तो भगवान में विश्वास करते हो आप ऐसा पूछते बॉम्बे में दिल्ली में ऐसा पूछते लोग, उनको बड़ा आश्चर्य होता है डॉक्टर हो क्या, चोटी रखते हो क्या, तिलक लगाते हो, भगवान की भक्ति करते हो, लहसुन प्याज नहीं खाते हो, डॉक्टर हो बस, उनको लगता है डॉक्टर होने के बाद सब कुछ ये सब करना बेकार चीज है ऐसा लगता है। लेकिन जब मृत्यु आती है ना तो वो आपको डॉक्टर के रूप में पहचानती नहीं है कि ये डॉक्टर है इसको मारना नहीं चाहिए डॉक्टर है, मृत्यु के सामने कोई पदवी नहीं होती किसकी है ना, कोई पदवी नहीं होती, बस समय हो गया, घंटी बज गई, चलना है, कोई समय का कंसेशन डिस्काउंट एक्सटेंशन कुछ मिलने वाला नहीं आपको। इसलिए हम भगवान के नाम का भजन करते हैं, क्योंकि जिसने मधु की बोतल को खोलकर मधु को चाट लिया है उसको मधु के मिठास के बारे में एक लंबा चौड़ा प्रवचन सुनने की जरूरत है क्या, नहीं है, उसने ऑलरेडी मधु खोलकर चाट के देख लिया है, अभी उसको कोई प्रोफेसर आकर उसका कॉम्बिनेशन क्या है, उसका कितना परसेंट ये है, कितना परसेंट क्या है, उसका क्या समझा रहा है पूरा उसका केमिस्ट्री, तो क्या फर्क पड़ेगा उसको, बोलेगा महाराज प्रवचन बंद करो बोतल खोलो और चाटो उसको, सब समझ में आएगा आपको वैसे ही भगवान का नाम जिसने लिया है उसकी मिठास जिसने अनुभव की है और उसके लिए इतने प्रवचन की जरूरत क्या है, मतलब माला लो और चालू करो बस, अभी थोड़ी देर तक प्रवचन ठीक होता है समझने के लिए, समझने के बाद फिर बस आध्यात्मिक जीवन जो है ना वो अधिकतर प्रैक्टिस का जीवन है, कम प्रवचन का जीवन है, कम समय प्रवचन सुनना है और बहुत समय तक प्रैक्टिस करनी है उसकी, ये आध्यात्मिक जीवन है, कुछ समय तक ठीक है समझने के लिए, उसके बाद में केवल सुनते रहना नहीं, जिंदगी भर सुनना जरूरी है लेकिन सुनते रहने के बाद कुछ करना भी है और अधिक समय तक करना है, कुछ समय सुनना है। दिन भर प्रवचन कितने कितने घंटे होते हैं दिन में बताओ, मंदिर में एक घंटा सुबह होता है, कभी घंटा शाम को होता है, दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं, सोते कितने घंटे 6-7 घंटे सोते हैं, कितने घंटे बचे 17-18 घंटे बचे ना आपके, तो उन घंटों में आपको प्रैक्टिस करना है जो आपने सुना है, पहले सुनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके बाद में जो सुना है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अधिक समय आपको प्रैक्टिस करना है जो आप सुन रहे हो, उतारना है अपने अमल करना है उसके ऊपर, व्यवहार में उतारना है। तो प्रेम की परीक्षा भी ऐसी होती है, अगर आप भगवान के नाम को जपेंगे अच्छी तरह से उसको उतारेंगे अपने व्यवहार में तो आपको ऐसे प्रेम का अनुभव होगा कि आपको फिर दुनिया में किसी भी प्रेम पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं। और वो जो प्रेम का अनुभव हम करते हैं उसके बाद में भगवान के प्रेम के अनुभव करने के बाद में सब जीवों पर आपका प्रेम हो जाता है अपने आप, अभी भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं भक्ति हॉस्पिस के अंदर, उसमें यही लिखा है वो व्यक्ति सबको प्यारा हो जाता है और वो उसे सब प्यारे लगते हैं जो भगवान पर प्रेम करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दुनिया में किसी पर प्रेम कर रहा है क्या उसके वजह से दुनिया में सबको प्रेम करता है क्या वो? नहीं, वो एकदम स्वार्थी बन जाता है, बाकी सबको हेट करता है और खाली एक व्यक्ति पर प्रेम करता है, तो वो व्यक्ति भी उसको एक दिन दगा देते हैं। इस स्वभाव ही ऐसा है इस प्रेम का, भगवान के प्रेम का स्वभाव ऐसा है कि वो करने लगने पर, शुरुआत ही करने पर सबके प्रति प्रेम होना आरंभ हो जाता है, तो उसको कहते हैं करुणा। एक प्रकार का अलग प्रकार का प्रेम है, सबके प्रति वो करुणा और दिल लगी हो जाती है, चाहे वो कुत्ता बिल्ली हो, गाय हो, या पंछी हो, या भारद्वाज पक्षी हो, सबके प्रति आपको प्रेम आएगा मन में, किसी का दर्द आप देख नहीं पाओगे, सबको आप दर्द निवारण करने का प्रयास करोगे, जा जाकर लोगों को मदद करने का प्रयास करेंगे। इतना बढ़िया परिणाम भगवान के प्रेम का है, सोचो आप। एक सामान्य व्यक्ति भी जब भगवान के प्रेम में आ जाता है संतों की दया से, तो वो ऐसी तरह से अनुभव करने लगता है जिंदगी में, वो सबके लिए चहेता हो जाता है, सबका चहेता, और सब लोग उसके चहेते बन जाते हैं। और ये मत समझना कि केवल कबीर जी को ये भाग्य था, केवल रमेश बाबा जी को ये भाग्य प्राप्त है, केवल सूरदास जी को भाग्य प्राप्त था, केवल किसी और दास को ये भाग्य प्राप्त, ये सारा भाग्य हमको सबको प्राप्त है, हम भी उनके जैसे जीव हैं, वो भी हमारे जैसे जीव हैं, लेकिन उन्होंने इसको स्वीकार किया इसलिए वो संत बन गए, हमने नहीं किया इसलिए हम लोग वहीं पड़े हैं जहाँ पड़े हैं। इसलिए हम सब लोगों को भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। अगर एक हंसी और आंसू हजार इस प्रकार का अनुभव नहीं करना है तो आपको तुरंत भगवान का नाम लेना है, नहीं तो वो अनुभव जो है एक हंसी और आंसू हजार वाला रेडी है आपके लिए, मिलेगा आपको, निश्चित रूप में मिलेगा, कितना भी उसको टालोगे ना पीछे आएगा वो अनुभव आपके, एक हंसी और आंसू हजार, क्योंकि तो इसके बीच में आप घिरे हो, चारों तरफ से आपको वो घिरा हुआ है, उसमें बाहर निकलना है तो आपको भगवान के चरणों का सहारा लेकर उनसे प्रेम करना है, तुम्हारी जिंदगी जो है सफल है, और भगवान भी बड़े संतुष्ट हो जाते हैं इसके अंदर, चलो भाई एक भटका हुआ जीव आ गया मेरे गोद में वापस, दुनिया की ठोकरें खाकर सब जगह घूम के सब जगह स्वाद लेकर फिर आ गया मेरे पास, चलो मैं गले लगाता हूँ उसको और बोलता हूँ अभी दोबारा मत जाना, एक बार गए घूम के आ गए बस हो गया, अभी दोबारा मत जाऊँ, मेरे पास रहो, ये सब कुछ तुम्हारा ही है, मेरा धाम भी तुम्हारा है, आओ ऐश करो मजा करो मेरे साथ रहो आनंद से रहो, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, आओ मेरे धाम में और आनंद से निवास करो। हरे कृष्णा। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो। यस
जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य है और समझता है, फिर भी हम
बोलो।
अच्छा, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि दुनिया में ज्यादातर हमको भी और हम देखते हैं आसपास में सबको भी कुछ ना कुछ आनंद मिलता रहता है, जैसे इतने पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है कि उसी में अटके रहता है, तो ये इसको कैसे भेदना,
इसको भेदना इसी अंडरस्टैंडिंग पे आप भेद सकते हो। इनका प्रश्न ये था कि सब लोगों को खुशी तो मिलती है ना, थोड़ा शराब पीने में मिलती है, थोड़ा खाने पीने में मिलती है, थोड़ा सा नशा करने में व्यभिचार करने में मिलती है, बहुत मज़ा आता है उसके अंदर, और नशा करने में जुआ करने में मिलती है, किसी को चीट करने पर मिलती है, किसी को फंसाने में मिलती है, तो उसमें से निकले कैसे बाहर, क्योंकि वो भी सत्य एक अनुभव है ना, वो ऐसा है ना, वो एक
साधारण मतलब एकदम ऑनेस्ट जीवन में भी, जैसे कोई
हाँ कोई प्रामाणिक है, सात्विक है,
अगर सबको पूछेंगे आप कि आपके जीवन में खुशी है या दर्द, तो पता नहीं ये लोग क्या जवाब देंगे, पर जनरली मैं देखता हूँ जनरली लोग या पीपल डोंट रियलाइज दैट दे आर इन सॉरो, मोस्टली देन से एक्टिंग ओके फाइन, सो दे वर नॉट
फील, वो ना हिरन है, हिरन उसको प्यास लगती है तो कैसे भागता है वो, उसके लिए सच है वो, उसको दिख रहा है पानी, मृग जल बोलते हैं उसको ना, क्या बोलते हैं उसको, मृग जल बोलते हैं ना उसको, आप लोग क्या बोलते हैं, मैरेज, हाँ वो जो हिरन रेगिस्तान भागते रहते ना, उसको जगह जगह पानी का तालाब दिखता है, सूरज की किरणों का ऐसा एक केमिस्ट्री है उसके अंदर कि वो जगह जगह पानी का आशय जलाशय दिखता है उसको, और वो भागते रहता है, जैसे वो भागता है वैसे वो आगे आगे जाते रहते हैं और भागते रहते भागते रहते हैं। तो आप कहेंगे कि सच है कि झूठ है, मुर्ग जल जो है वो एक्चुअली नहीं है, वो तो जल है ही नहीं कुछ रेगिस्तान में, लेकिन उसको जो दिखाई पड़ रहा है वो जो अनुभूति वो सत्य है, उसको दिख रहा है कि पानी है उधर, तो उसकी अनुभूति सत्य है, उसी के आधार पर दौड़ रहा है। इतना दौड़ क्यों रहा है, उतनी शक्ति कहाँ से दौड़ने की आ रही है, इतनी उत्साह कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा है वो। तो हमारा आनंद भी ऐसा है, हमको लगता है जो हमको आनंद मिल रहा है वो आनंद है, एक्चुअली वो एक भूल भुलैया है, वो आपको अटके रखना है, रखने के लिए बना के रखा है। जो बंदर होता है ना, बंदर उसको ना एक छोटे मुंह वाले बर्तन के अंदर कुछ खाना रखते हैं, है ना, तो वो हाथ डालता है उसके अंदर और खाना पकड़ता है ऐसे हाथ में, और फिर हाथ निकालने की कोशिश करता है तो हाथ ही निकलता नहीं उसका। तो आप बोलेंगे अंदर जो खाना है वो सत्य है कि नहीं है, बताओ। सत्य है, अंदर खाना है उसके, उसका हाथ भी पहुंच चुका है, उसको लग रहा है हाथ में जलेबी आ गई मेरे, लेकिन उसको बाहर नहीं निकाल सकता उसको, क्योंकि उसका मुंह इतना छोटा है कि जैसे मुट्ठी बना लेता है ऐसे खोलेगा तो जाता है, मुट्ठी बना लेने से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन वो मिलेगा इस आशा में वो लगे रहता है उसके अंदर, तो उसको बांधने के लिए पर्याप्त है। लेकिन आपकी जरूरत जो है ना वो उस खुशी से पूरी नहीं होती है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, एक ही प्रॉब्लम है, अगर खुशी भी मिलती है आपको कुछ समय के लिए मिलती है। आज शादी बनाओ, आपको इतना आनंद आएगा, शादी हो रही है हो रही है हो रही है, हाँ 15 अगस्त को शादी है मेरी, तो 6 महीने से आप वेट कर रहे हैं, दिन गिन रहे हैं, 350 349 348 148 30 15 14 काउंटडाउन, कहते हैं कि खुशी उसमें होती है, समझा आपको क्या है? रियल हैप्पीनेस इन द मटेरियल वर्ल्ड इज ओनली इन एंटिसिपेशन ऑफ हैप्पीनेस, कि खुशी आ रही है इसमें ही खुशी होती है, एक बार वो आ गई तो खुशी बंद हो जाती है। ये हम सबका अनुभव है, जब कोई सब नई गाड़ी आ रही है, गाड़ी बुक कर दी है, बुक कर दी है, सबसे लेटेस्ट गाड़ी मार्केट में है, सबसे बढ़िया गाड़ी है आ रही है, हमने बुक करके 2 महीने बाद में आने वाली है, अभी कल आएगी, कल आ गई, तब तक जो खुशी है वही खुशी है, उसके बाद में आने के बाद में फिर किसी ने स्क्रैच कर दिया, एक पंक्चर हो गया, किसी रिक्शा वाले ठोक दिया उसको, कोई आके कुछ करके गया उसके ऊपर, बच्चा दुख शुरू हो जाता तुरंत। समस्या एक ही है, ये नहीं कि शराब पीने में खुशी नहीं है, ये नहीं कि व्यभिचार करने में खुशी नहीं है, ये नहीं कि मांस खाने में खुशी नहीं है, बिल्कुल खुशी है, लेकिन टेम्पररी है, हमको परमानेंट खुशी चाहिए। वो खुशी जो शुरू में खुशी दे बाद में गम दे वो आपको अच्छा नहीं लगता है, फिर वो दिन की याद रहेंगे जिस दिन हम मिले थे उधर, उसके बाद में सब समाप्त हो गया, तबाह हो गए हम, बर्बाद हो गए, कितनी कहानी लिखते हैं उसके बारे में। एक बोतल कांच की जब जमीन पर गिर जाती है तो उसके 1000 टुकड़े होकर वो बिखर जाते हैं, उस पर कविता लिखते हैं, वैसे ही मेरा दिल है तो 1000 टुकड़े होकर बिखर गया है, अभी उसको आप जोड़ नहीं सकते, एक हादसा ऐसे आया कि बोतल हमारी टूट गई, कभी ना जुड़ने के लिए दुआ। फिर लोग बोलते वाह क्या बात है। महारानी भी कविता लिखी है, क्या लिखा है उसके अंदर कि तुम राजा हो और कितने दिन राज करोगे, क्या है वो भूपति है ना, हाँ वही, तो वो जग भूपति का क्या है, वो कितना राज करोगे आगे जाकर, क्या एक कड़ी है ना उसके अंदर, क्या है वो उसमें ऐसा उसका भाव है, अरे तुम राजा बनकर आए हो, यहाँ राज कर रहे हो वहां राज कर रहे हो, लेकिन एक दिन सब राज चले जाएंगे और सब मौत के घाट उतारे जाएंगे, कोई कहाँ के भूपति और कहाँ के राजा, ऐसा भाव है उसका। मतलब सारी जगह पे आनंद है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि आप जब किसी को फंसाओगे और उसका पैसा चोरी करोगे समझो तो वो पैसे का जलेबी खाओगे ना आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। अपने जायज पैसे से जलेबी खाने में उतना मजा नहीं आएगा, उतना चुराए हुए पैसे से जलेबी खाने का आनंद आएगा, लेकिन वो कुछ समय तक रहेगा। जब पकड़े जाके जेल में जाओगे तो सारा जलेबी का आनंद समाप्त हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है खाली, और कुछ नहीं। तो ज्ञान ही उसके ऊपर काट है। अगर आप ज्ञान प्राप्त करते हो तो आपको जो आज खुशी मिल रही है, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, वो आपको समझ में आएगा कि ये खुशी शाश्वत नहीं है, ये कुछ समय के लिए है, बाद में निश्चित ही दुख देने वाली है। तो बुद्धिमान व्यक्ति फिर उसमें मन नहीं लगाता। क्या बोलते हैं भागवत में, भगवत गीता में भगवान, आद्यंतुवंतु कौन्तेय नते शूरमते बुधः। जब आपको समझ में आएगा कि इस वस्तु की, इस घटना की या इस चीज की शुरुआत है और इसका एक अंत है, ऐसा आपको समझ में जब आएगा कि ये तो शुरुआत भी है उसका अंत भी है, ऐसे वस्तु में बुद्धिमान व्यक्ति अपना मन नहीं लगाता। न तेषु रमते बुधः, बुधः मतलब बुद्धिमान, रमते मतलब आनंद लेना, न तेषु उसमें वो अपना दिल नहीं लगाता, क्योंकि उसको मालूम है इसकी एक शुरुआत है इसका एक अंत है, बीच में बहुत सारा सनसनीखेज अनुभव है लेकिन अंत होने के बाद में दुख ही दुख है। इसी को बुद्धिमान कहते हैं। ऐसा नहीं जो नोट कमाने में बिजी है बहुत, जो नोट बंदी होने पर कमीशन कमाने में बहुत बुद्धिमान है, अब लग क्या दिमाग है उसका, नोट बंदी हो गया तो पैसे कमा रहे हैं तो वाह वाह करेंगे आप उसकी, लेकिन वो दिमाग की बात नहीं कर रहे हम, उस दिमाग की बात कर रहे हैं जिसमें समझ में आता है कि ये समाप्त होने वाला आनंद है, ये समाप्त नहीं होने वाला आनंद है, ये चिरंतन आनंद है, नश्वर आनंद है, अमर आनंद है और ये समाप्त होने वाला आनंद है। ये समझ में आना ही जिंदगी है, जिसको ये समझ में आता है वो भाग्यवान जी, फिर वो ऐसे वैसे गहरे चीज में दिल नहीं लगाता, मन नहीं लगाता, उसको लगे रहते अपने भगवान के आनंद में मस्त रहते हैं, उसकी ब्रह्मानंदी ताली बज जाती है, फिर उसको दुनिया की कोई ताली सुनाई नहीं पड़ती। और कोई प्रश्न है किसी का? यस, कड़ी याद करो।
बड़े बड़े
हाँ बोलो। सब में आनंद है, कोई बात नहीं है, लेकिन सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, हम उस आनंद के लिए हमारी आत्मा तड़प रही है, हमको पता भी नहीं है, जो आनंद हमें बड़ी सहजता से भगवान के नाम के कीर्तन से प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई प्रश्न है किसी का? बोलिए डॉक्टर रिपु दमन, चंद्र प्रकाश, चंद्रपाल और यस
एक ऑब्जर्वेशन।
हाँ बताइए।
ऑब्जर्वेशन है जैसे आप कह रहे थे प्रेम ना, तो सब अपना रिश्ता पूरा करके भी और सब कुछ करते करने के बाद भी पिक्चर के गाने गाते रहते हैं, इसी का मतलब है प्रेम संतुष्ट नहीं होता।
वो भी दर्द वाले की नहीं आता है, प्रेम वाले बहुत कम गाता है गाना, गाते एक गाना। वो एक पिक्चर में पुराने में एक थे गुरुदत्त, वो गुरुदत्त के सारे फिल्मों में दुनिया की सच्चाई दिखाते थे, वो कोई रोग से मर रहा है, कोई कष्ट से मर रहा है, कोई किसी को लूट कर मर रहा है, कोई और कुछ से मर रहा है, उसने भी आप में आत्महत्या कर ली, वो इतना भावुक था आदमी, तो बहुत सारे पिक्चर निकाले उसने, हर पिक्चर में दुनिया की सच्चाई दिखाया उसने, बहुत सारी चीज़ें, कोई काम वासना से पागल होकर कुछ कुछ कर रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई रोगी है, कोई कुछ यहाँ बीमार है, कोई गरीबी से मर रहा है, इसका ही चित्रपट निकाला उसने, उस पर कविता भी लिखी, वो खुद गाया भी उसने उस कविता को, एक दिन खुद आत्महत्या कर लिया उसने, क्योंकि केवल नेगेटिव 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 चीज़ देखते गए वो जिंदगी में, सच्चाई से अवगत हो गया वो, यहाँ पर आनंद नहीं है, लेकिन कहाँ पर आनंद है ये उसको पता नहीं था, इसलिए उसने आत्महत्या कर लिया। एंड में उसका कविता लिखता था वो लास्ट में कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ऐसे उसकी कविताएं, उसके बाद में उसने आत्महत्या कर दिया वास्तव में, क्योंकि दुनिया में कुछ नहीं है इसको पता चला। लेकिन जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, आओ चल के तुझे मैं लेके चलू एक ऐसे गगन के तले। उसको पता नहीं ना वो कैसे भी कोई जगह है जहां पर कोई गम है ही नहीं, खुशियां ही खुशियां हैं, इसलिए आत्महत्या कर लिया। क्यों, कारण क्या था उसका? अज्ञान। अज्ञान की वजह से सच्चाई को मालूम होने के बाद तड़प तड़प के मरा। इसलिए सबसे बड़ी जो भेंट है दुनिया में, पहली नंबर की भेंट, वो है अज्ञान, वो है नॉलेज। उसके बाद में फिर प्रेम की भेंट प्राप्त होती है उस ज्ञान के मार्ग से। पहला है अज्ञान का अंधकार दूर करने वाला प्रकाशमयी ज्ञान, जब वो प्राप्त होता है तो फिर सुख का रास्ता और सुख का धाम का पता पता चल जाता है, कहाँ ढूंढना है उसको, कंफ्यूज नहीं हो उसको, ऐसा नहीं कि ट्रेन में बैठा है और पूछे कहाँ जा रहे हो, बोले पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, अरे ट्रेन तो मथुरा जा रही है, नहीं पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप कहाँ उतरोगे, पता नहीं मैं कहाँ उतरने वाला हूँ, ऐसे कुछ लोग रहते हैं गाड़ी में जिनको पता नहीं है कहाँ जाना है, जहाँ गाड़ी लेके जाएगी वहाँ चले जाएंगे, फिर देखेंगे आगे भाग के कहाँ ले जाता है। लेकिन आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है, कौन सी गाड़ी पकड़नी है, कितना टिकट निकालना है और किधर उतरना है, क्लियर हो जाएगा आपके मन में जैसे ही आप भगवान की भक्ति में आए। नो कन्फ्यूजन, कोई भटकने का कोई चांस नहीं उस भक्ति को, वो किधर भी धक्के खाएगा तो भी लक्ष्य उसका फिक्स है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, और वहाँ पहुँच के रहेगा वो, क्योंकि उसका निश्चय हो चुका है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, फिर वो कष्ट उठा के भी वहाँ पहुँचेगा। हमको ऐसे राह का राहगीर होना चाहिए इसमें सब शाश्वत राही हैं, तो शाश्वत दिशा में शाश्वत लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं का साथ लेकर हमको सफर करना है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच, हरि बोल। थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं।